नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है और आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप बताते हुए कहा कि इससे देश का समग्र विकास हो सकेगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट से राज्य में व्यावसायिक गतिविधियां तेज होंगी। विपक्ष ने कहा बजट में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। यह उनका रिकॉर्ड 9वां बजट है। बजट 2047 तक भारत को विकसित बनाने और सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना के अनुरूप है। बजट में आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित आयकर रिटर्न की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। वित्त मंत्री ने 6 सेक्टर में नई पहल का प्रस्ताव किया। इनमें रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण तेज करना, औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम चैंपियन उद्यमों का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे को सशक्त करना, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना तथा शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना शामिल है। रेलवे की क्षमता को बढ़ाने के लिए दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, वाराणसी और सिलीगुड़ी में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। बजट में कैंसर से पीड़ित मरीजों को राहत देने के लिए 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पर छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को ऐतिहासिक बताया है। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट देश हित में है और इससे देश के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और यह बजट विकसित भारत के सपने को मजबूत आधार प्रदान करेगा।
ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत भविष्य में तेजी से विकास कर सकेगा।
इस बजट में जहां भारत के वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत का जो ग्रोथ रेट है, जो 7% लगातार बढ़ रहा है, ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से हमने अपने जीडीपी को लगातार मजबूत किया है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को भी अपने कंट्रोल में रखा है। आज के इस बजट से समाज का हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, महिला हो, मध्यम वर्ग हो, सबके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में आकार दिया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
केंद्रीय बजट में बिहार के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। इसमें पटना में जहाज मरम्मत केंद्र, नए एक्सप्रेसवे और गंगा जल मार्ग विकास प्रमुख है। इसके अलावा वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार से होकर गुजरेगा। इस कॉरिडोर से पटना, बक्सर, आरा, कटिहार और किशनगंज को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं राज्य के 5 लाख से अधिक आबादी वाले 8 शहरों को विकास के लिए अतिरिक्त फंड की घोषणा बजट में की गई है। इससे पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, बेगूसराय, नालंदा, पूर्णिया और गया जी का तेजी से विकास हो सकेगा। बजट में पटना को पूर्वी भारत के ट्रांसपोर्ट और औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट को सकारात्मक बताते हुए कहा है कि यह बजट विकसित भारत बनाने के लक्ष्यों को पूरा करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलमार्ग के विस्तार से बिहार के भी कई शहरों को फायदा मिलेगा और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि बजट में शहरों के विकास के लिए किए गए प्रावधानों से बिहार में शहरीकरण को नई गति मिलेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बजट को ऐतिहासिक बताया है। श्री चौधरी ने कहा कि इस बजट से बिहार सहित पूरे देश में विकास परियोजनाओं को तेजी मिलेगी।
2047 का भारत कैसा होगा। तीन कर्तव्य के बारे में बताया, छह मुद्दे जो महत्वपूर्ण इस भारत के विकसित के लिए होंगे उसके लिए बताया, कई योजना के बारे में उन्होंने बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को धन्यवाद देता हूं कि 2047 के भारत के लिए जो नींव आज उन्होंने रखा है इसके लिए उनको बधाई देता हूं।
वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह बजट विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार करने वाला बजट है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, अर्बनाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया है, गांव शहर की दूरी को कम करने का इसमें प्रयास किया गया है, आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया है। मैं मानता हूं कि ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है और इसके लिए मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से माननीय वित्त मंत्री साहिबा का दिल से आभार प्रकट करता हूं।
जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि यह बजट किसानों, महिलाओं और गरीबों को समर्पित है।
किसान, महिला या फिर आप दलित वर्ग के लोग, जो गरीब लोग हैं, उस पर केंद्रित करके उनके उत्थान के लिए क्या क्या हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में हो सकते हैं, उसको ध्यान में रख के ये किया गया बजट।
जदयू के सांसद संजय झा ने केंद्रीय बजट को दूरदर्शी बताया है। संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि इसमें गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के कल्याण के लिए प्रावधान किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यह बजट देश की प्रगति को और आगे बढ़ाएगा।
यह बहुत ही प्रगतिशील बजट है, विकसित भारत का रास्ता स्पष्ट करता है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां टेक्नोलॉजी, जहां किसानों के लिए, दिव्यांगों के लिए, आयुर्वेद के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत और तेज गति से आगे बढ़ाया है। मैं अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, निर्मला जी का। विकासशील बजट है, देश की प्रगति को और आगे बढ़ाएगा।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को पूरा करेगा। इधर कांग्रेस, राजद, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट सहित अन्य विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है।
ये बजट गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी इनका कोई समाधान, सकारात्मक कोई सलाह या कोई कदम उन्होंने नहीं दिया।
केंद्रीय बजट में बिहार को प्राथमिकता दी गई है, इससे विभिन्न क्षेत्रों का विकास हो सकेगा। प्रदेश के आम लोगों ने बजट की सराहना की है।
जो आज बजट पेश किया गया है सभी वर्ग के लिए अहम बजट रहा है, मैं इस बजट की सराहना करता हूं।
काफी हित में है, किसानों के लिए हित में है, बच्चों के लिए हित में है, स्कूलों का विस्तार कर रहे हैं, अच्छा बजट, व्यापारियों के लिए अच्छा है, इसको किसान को बेहतर फायदा होगा तो हम लोगों को फायदा हो रहा है, महिलाओं के लिए बेहतर बजट।
इससे विद्यार्थियों को और रोगी को बहुत ही राहत मिलने वाला समय आने वाला है और इस देश में बहुत ज्यादा रोजगार उत्पादक वाला अब एक पर्यावरण का निर्माण होगा इस बजट के माध्यम से अगले कुछ साल।
बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। 27 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वहीं 3 फरवरी को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। आज संत रविदास की जयंती है। संत रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा के दिन बनारस में हुआ था। वे 14वीं सदी के महान संत और कवयित्री मीराबाई के गुरु थे। उन्होंने जाति का भेदभाव मिटाकर लोगों को एकजुट करने के लिए प्रोत्साहन दिया था। उनकी जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप बताते हुए कहा कि इससे देश का समग्र विकास हो सकेगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट से राज्य में व्यावसायिक गतिविधियां तेज होंगी। विपक्ष ने कहा बजट में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।